நாராயண 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 ஸ்ரீவன் நாராயண 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 ஸ்ரீமன் நாராயண நாராயண ஸ்ரீமன் நாராயண 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 சியாவர ராமச்சந்திர கீ மார்முட்ட வம்சி வாலே கீ.
दूसरी बात यह है कि संसार के बीच के वहां कौन उस कोटि के महापुरुष हैं, उनके नाम आप बतला दे रहे हैं। आप तो एक प्रकार से समझो कि बहुत ही पुराने आदमी हैं, आपने बहुत ही अर्से तक ये सब देखा है, तो आप तो बतला सकते हैं कि भाई ठीक है अमुक आदमी महात्मा है, अमुक आदमी भगत है, तो फिर उनके पास हम लोग जावें, ऐसा तो आप बतला सकते हैं ना। तो इसके विषय में असली बात यह है कि यदि मेरे बतलाए हुए आदमी के पास में यदि आप श्रद्धा करो तब तो मेरे में ही करनी अच्छी है, क्योंकि मेरा बतलाया हुआ जो है वो तो एक प्रकार से थी, यदि मेरे वचनों में ये विश्वास करो कि ये बतला दे कि ये महात्मा ये एक प्रकार से ज्ञानी है योगी और उसको ही आप मानने लगोगे, तब तो आपने और मेरी बात का अधिक आदर किया, ये तो सोचने की बात है। दूसरी बात सच्ची यह है कि ये भी मेरी सामर्थ्य नहीं है कि मैं किसी आदमी को पहचान सकूं, मैं किसी योगी को महात्मा को महापुरुष को पहचान भी नहीं सकता कि जो आपको मैं बतला दूं। मैं आपको बतला दूंगा और उसके अनुसार यदि उसको महात्मा मान करके आप उसको योगी मान करके अरे समझो कि उसके पंजे में फंस जाओगे तो वहां भी शायद आपको धोखा हो कि वो बात ठीक भी निकले गलत भी निकले। तो मेरा जो एक प्रकार से निश्चय किया हुआ मान्या हुआ समझा हुआ जो है वो ठीक निकले ऐसा मुझको विश्वास, इसलिए मेरे से पूछ कर करके कि अरे उसको महात्मा मानना योगी मानना ये यदि आप करो तो ये भी आप गलती खाओगे, ऐसा भी आपको नहीं करना चाहिए। तो फिर ये बात होती है कि फिर हम संसार के वहां किसको महात्मा माने, किसको भक्त माने, किसको ज्ञानी माने और कैसे काम चले। बोले एक नंबर बात तो यह है कि सबसे बढ़ करके के महात्माओं के भी महात्मा ईश्वर है परमात्मा, उनकी शरण होना चाहिए, वे स्वयं समझो कि प्रकट होकर के महात्मा के रूप में आकर के हम लोगों से मिल सकते। एक नंबर ईश्वरों का ईश्वर जो साक्षात जो परमात्मा देव है वे महात्माओं के भी महात्मा है। दूसरे नंबर के बीच के मां उस भगवान की जो गीता है भगवत गीता समझो यह भी महात्माओं के भी महात्मा है। सिख लोग जो है वे समझो कि नानक शाह का जो ग्रंथ साहब है उसको ही एक प्रकार से ईश्वर के तुल मान करके और ग्रंथ साहब को ही एक समझो कि गुरु मान करके अरे सब कोई उनके अनुसार चलते हैं। तो ये जो आपने भगवत गीता जो है वो एक नंबर पुस्तक है हमारे देखने के बीच के वहां, उसके समान कोई अध्यात्म विषय के वहां कोई पुस्तक है सो नहीं हमारे जानने में, किंतु हमारी जानकारी तो मामूली है, हम कोई सर्वज्ञ नहीं, हमने कोई सब शास्त्र नहीं देखे, जो देखे उनके माँ हमको सबसे बढ़ करके भगवत गीता मालूम दे। और भी बहुत अच्छी अच्छी पुस्तकें हैं, भागवत रामायण महाभारत आदि जितने जो पुस्तक है सभी अच्छे हैं, तो पुस्तक से भी हम बहुत लाभ उठा सकते हैं, पुस्तकों से भी हम बहुत लाभ उठा सकते हैं। इसी बात को ख्याल में रख करके और समझो कि पुस्तकों के प्रचार के लिए हम लोग चेष्टा करते हैं, इसी बात को ख्याल में रख करके भगवान कहते हैं कि अर्जुन तेरा मेरा जो संवाद जिस गीता में लिखा हुआ है और इसको जो संसार में प्रचार करता है गीता शास्त्र का उसके समान मेरा प्यारा काम करने वाला दुनिया के बीच के माँ न तो कोई है और न कोई होगा। इस प्रकार से भगवान ने घोषणा की गीता की 18वीं अध्याय के 68 और 69 के श्लोक के बीच के माँ, उसकी बड़ी महिमा गाई है गीता की। इतनी महिमा गाई है कि इस गीता का जो समझो कि मेरे भक्तों में कोई धारण करावेगा तो मेरी परम भक्ति के द्वारा वह मुझको प्राप्त हो जाएगा, और इतना ही नहीं उससे बढ़कर कोई मेरा प्यारा काम करने वाला दुनिया में नहीं है और न कोई भविष्य में होगा। तो इस बात को हम पढ़ करके हमारे मन के माँ ये श्रद्धा हुई, ये विश्वास हुआ कि संसार के बीच के माँ समझो इस प्रकार की गारंटी भगवान दे रहे, तो इसके ऊपर थोड़ा गौर करना चाहिए। ये एक अलौकिक बात है, अद्भुत बात है, ये एक छिपी हुई रहस्य की बात है, इसे गौर करने की चीज। तीसरी बात फिर क्या है, भगवान की बात की कही आपको, गीता की बात कही, शास्त्रों की बात की। अब वो सवाल अभी बाकी कि ज्ञानी जो है, महात्मा जो है, योगी जो है, वृक्ष जो है, तो जिनके संग करने से थी, जिनके संग करने से हमारी आत्मा में तीव्र वैराग पैदा हुए, वे वृक्ष पुरुष है। जिनके संग करने से हमारी आत्मा के बीच के माँ, जिनके दर्शन से, भाषण से, स्पर्श से, बल्कि चिंतन से भी हमारी आत्मा के माँ तीव्र वैराग पैदा हुए, तो समझना चाहिए कि हाँ ये वीतराग पुरुष। क्योंकि सूर्य भगवान की रोशनी में बैठते हैं, धूप के माँ तो गर्म हो जाते हैं, तो हमको मालूम होता है कि सूर्य भगवान में न मालूम कितनी गर्मी है। हम तो 5 मिनट समझो धूप में बैठे तो चरणों से लेकर मस्तक तक गर्म हो गए एकदम, तो ये मालूम हो जाता है ये गर्मी कहाँ से आई। तो उसी वक्त ज्ञान होता है कि गर्मी सूर्य भगवान से आई। अग्नि के नजदीक बैठते हैं तो एक प्रकार से थी, उसकी भी ताप आती है अग्नि के, अग्नि की शक्ति के अनुसार। और केदार जी चले जाते हैं बर्फ के ऊपर तो वहाँ चरणों से लेकर मस्तक तक सर्दी आ जाती, वो बर्फ का प्रभाव। इसी प्रकार से थी, जिसके दर्शन भाषण स्पर्श और वार्तालाप से, चिंतन से हमारे महात्माओं महात्माओं के लक्षण आवे, महात्माओं के जो लक्षण गीता में जो लिखे हैं, गुणातीत पुरुषों के जो लक्षण गीता में जो लिखे हैं, ज्ञानी महात्माओं के, वे लक्षण हमारे में आने लगे, समझा, तो समझना चाहिए कि हाँ ये ज्ञानी महात्मा पुरुष है। और जिनके संग से थी हमारे हृदय में, हमारे भावों के बीच के माँ, जो भगवान ने अपने भक्तों के लक्षण बतलाए हैं गीता की 12वीं अध्याय के अंत में, गीता की 12वीं अध्याय के माँ समझो कि 13 के श्लोक से लेकर अध्याय की समाप्ति तक जो लक्षण बतलाए हैं, वे लक्षण हमारे में आने लगे तो समझना चाहिए कि भाई जिनके संग से, दर्शन से, भाषण से, तो ये उसकी पक्की परीक्षा है कि ये भगवान का भक्त है। और जिसके दर्शन से हमारे शरीर के माँ, मन बुद्धि में, इंद्रियों में देवी संपदा के लक्षण आने लगे, जो कि गीता की 16वीं अध्याय के आरंभ के माँ 3 श्लोकों में लिखे हैं, तो ये समझना चाहिए कि ये देवी संपदा वाला पुरुष है। और जिनके संग से, दर्शन भाषण वार्तालाप से आसुरी संपदा के लक्षण हमारे में आवे, आसुरी संपदा के लक्षण, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार राग द्वेष ये आने लगे, तो समझना चाहिए कि ये देखने का तो है मनुष्य और है साक्षात राक्षस। नहीं तो हम राक्षस क्यों जा रहे, तो इन्हीं का तो हमारे पर प्रभाव पड़ रहे है। इसी प्रकार से थी समझो कि जिनके दर्शन से थी हमारे शरीर के भीतर में योग का ज्ञान आप बढ़े, जिनके दर्शन भाषण स्पर्श से, तो समझना चाहिए कि ये योगी है, ये योगी है। तो जैसा करे संग और तैसा चढ़े रंग, तो अपने पर रंग जो चढ़े उसको देख करके एक पर उसकी परीक्षा करनी चाहिए, वो पक्की परीक्षा, सच्ची परीक्षा है। हमारे एक बात याद आ गई, एक कहानी किस्से की बात हमारे बहुत याद आती, एक राजपूताना की एक कहानी है, हमारे बीकानेर राज के, हमारे बीकानेर राज के बीच के माँ जो एक प्रकार से थी, एक राजा थे, नाम तो मैं नहीं बतलाता हूँ, किंतु एक राजा थे। वे राजा जब गद्दी पर बैठे तो उन्होंने बुजुर्गों से, बूढ़े अपने घर वालों से बुला करके, अपने कुटुंब के कोई दादा लागे, कोई परदादा लागे, कोई ताऊ, कोई चाचा, सब अपने कुलबे वालों को बुलाया और बुलाकर पूछा कि दादाजी मैं एक बात आपसे पूछता हूँ, तो आप निर्भयता से जैसी बात आपके दिल में आवे सच्ची बात कहना। बोलो आपने पूछो, आप अब राजा के पदवी पर है ना, तो एक प्रकार से जब राजा की पदवी पर है तो चाहे छोटा ही हो उसको बड़ी बोली से ही बोलते हैं। तो पहला तो वे कंवर साहब ही कहते थे, अब राजा हो गए राजा करने लगे, जब तो उसके पिता थे तब कंवर साहब थे। बोलो आप पूछो कि आपने जो बूढ़े आदमियों ने हमारे तीन पुरुषों का राज देखा है, मेरा भी राज अभी थोड़ा दिन से जो 10-5 वर्ष से आप लोग देख रहे हो, और इसके पहला मेरे पिता का राज था उसको भी आपने देखा है, उसके पहला मेरे दादे का राज था उसको भी आपने देखा है, तो अपेक्षा करते हमारे तीनों के राज के वहां किसका राज बढ़िया, मेरा जो शासन है वो बढ़िया है या मेरे बाप का शासन बढ़िया था या मेरे दादे का शासन है सो बढ़िया था। बोलो कंवर साहब आप बड़े आदमी, आपकी परीक्षा हम लोग नहीं कर सकते, आपकी, आपके पिता की, आपके दादे की, उनकी परीक्षा करनी हमारी सामर्थ्य के बाहर है। हम तो अपने में जो बात बीती, अपने ऊपर जो असर पड़ा वो बात हम कह सकते, उससे आप अंदाजा साहब लगा ली। बोलो आप में बीती वो बात ही कहो। तो बोला जब आपके दादाजी का राज था तब मेरी उम्र 20 साल की थी, तो मैं एक प्रकार से धोरों के वहां जो बारी के टीबी होते हैं वहां से मैं आ रहा था, तो मेरे कानों में आवाज पड़ी कि कोई एक स्त्री रो रही है। मैं उसके पास में गया, वो बनियानी थी और उसके शरीर के ऊपर 10,000 का जेवर लदा हुआ था और वो एक प्रकार से रो रही थी। मैं कहा कि बहन तू क्यों रो रही है, उसने कहा सारी बात बतलाई, मैं अपने पीर से थी ससुराल के मां जा रही हूं और मैं मुकलावा लेकर के अपने पीर से थी अपने ससुराल को जा रही थी, मेरे साथ के मां समझो कि बैली थी, बैली माने समझो कि बैलों की गाड़ी और समझो कि ऊंट थे और उसमें बहुत सामान 1,000 रुपयों का सामान लदा हुआ था और मेरे साथ के माँ समझो कि रक्षा करने वाले भी बहुत रक्षक भी थे, किंतु कोई 20 आदमियों की एक धार आई डाकुओं की और वे आकर के एकदम समझो कि हमला कर दिया, तो जितने जो आदमी थे सब भाग गए, मैं भी भाग गई, तो वे सब माल लूट करके ले गए और मैं अपने प्राणों को बचा करके इस टीबे के ऊपर सो चली आई, तो यह मेरी दशा है। तो पूछा कि तुम्हारा पीर में कौन कौन है, उसने बतलाया ये ससुराल के माँ, ससुराल के भी नाम लिख करके बतला दी। वो बोला कि आपके ससुराल वाले को मैं जानता हूँ, भाई तू कोई बात का फिक्र मत कर, मैं तुम्हारे घर को पहुंचा दी। तो वो कहता है कि मैं उसको साथ में लेकर के और अपनी बहन के समान समझ कर करके और उसके घर के ऊपर उसके ससुराल के यहाँ ले आया। ससुराल वाले उस खोज में थे, उनके पास पहले ही खबर पहुंच गई थी कि एक प्रकार से थी धाड़ी आए सो सब धन लूट करके ले गए और अपनी बहू का भी पता आई। अब वे लेकर पहुंचे कि या बहू के बीच में बैठी रो रही थी और वो घर आकर के रोने लगी, बेहाल रोने लगी और कहने लगी अपने सास को, ससुरे को, पति को कि मेरी बड़ी भारी दुर्दशा हुई, समझो कि जो कुछ माल मत्ता था सब लूटा गया और मैं किसी भी प्रकार से अपना प्राण लेकर के जंगल के माँ धोरों के माँ भाग, ये पुरुष जो है ये मेरी रक्षा कर, ये मुझको यहाँ लाया, अब मैं इसे क्या गुण क्या गाऊं, तो इसको आप लोग संतुष्ट कर करके भेज। तो वे बोले कि महाराज आपने हमारा बड़ा उपकार किया, हमारी जो स्त्री है उसको जीव दान दिया और हमारे धन की रक्षा करी, इसलिए हम आपको समझो कि 1000 रुपया पुरस्कार देना चाहते हैं। उसने बोला कि मैंने इनकार किया कि भी मैं ये कोई रुपयों के वास्ते काम नहीं किया, मैं अपना कर्तव्य समझ करके मेरे दिल के माँ दया आ गई और मेरे दिल के माँ ये एक प्रकार से थी न्याय प्राप्त हो गया और मैं समझा कि तू मनुष्य तेरा यह धर्म है, तो मैं धर्म समझ करके ये काम किया है, कोई इनाम के वास्ते नहीं। उन्होंने बहुत कोशिश करी, अच्छा 500 रुपया ही लो, कुछ तो लो, किन्तु मैं 1 पैसा भी नहीं ले। ये बेचारे लाचार हो गए और क्या उपाय कर सके जब मैं नहीं लिया, बस मैं अपने घर आ गया। ये मेरी वृत्ति जब तक आपके दादे जी जीते रहे यही मेरी वृत्ति बड़ी थी। जब आपके दादे जी का शरीर शांत हो गया और उस वक्त के बीच के माँ मेरी आयु जो है सो करीब 50 वर्ष की हो गई, उस वक्त के माँ मेरे मन में ये बात आने लगी कि देखो कि उस समय में एक जो स्त्री अपने को मिली थी, कैसा मौका था, उसे जंगल में उसका 10,000 रुपया का जेवर उतार लेते तो रोती रहती और रोती थी, रोने में ही रोना खत खत जाता, अब तुम्हारे को कौन पकड़ता, तो वो 10,000 रुपयों का आज ब्याज होता तो कितना होता, समझा, क्योंकि 12 वर्ष से दूना हुए पाठाना के ब्याज से, 1 रुपया के ब्याज से, तो एक प्रकार से थी कितने रुपये हो जाते। तो मैंने बड़ी भूल करी, मैं इस बात के वहां गलती खाई, क्या धर्म के झंडे को पकड़ के बैठ गया मैं, तो अब वो क्या मुझको धर्म काम देता है, यदि मैं वो गहना उतार देता तो आज मालोमाल हो जाता, ऐसी मेरी भावना आने लगी। वो बात तो मैंने बुरी मालूम देने लगी विचार के द्वारा, मैं विचार के द्वारा बुद्धि के द्वारा तो वो बात मुझको बुरी मालूम देने लगी, किंतु रुपयों की आसक्ति के कारण से थी मुझको ये बात मालूम होने लगी कि ये तने भूल खाई, वो रुपया एक उसे घर में आ जाता तो आज मौज कर। और कंवर साहब जब से आप गद्दी पर बैठे हो, अब मेरी 70 वर्ष की उम्र हुई तब आप बैठे और आज मेरी उम्र समझो कि 75 या 80 के नजदीक जाने लगी। अब जो मेरी स्त्री जो है वो मर गई, मेरे मन में ये आने लगी कि बुढ़ापे की अवस्था के बने समझा करके अपन ले आता तो स्त्री की तो स्त्री रहती और रुपया का रुपया रहती, 10,000 रुपया का गहना भी अपने हजम हो जाता और उसको समझा करके अपनी औरत बना लेते, समझा, तो मौज करते। तो अब एक प्रकार से बुढ़ापे में वो सेवा करती और रुपयों से मौज। अब कंवर साहब ये बात हमारे दिल में आने लगी, हम जो मरने चाहते ये वृद्धावस्था के बीच के वहां हमारी ये दशा है। कंवर साहब हम तो अपनी दशा आपको बतलाई, आपके माँ कौन बड़ा छोटा है उसके निर्णय करने की हमारी सामर्थ्य नहीं, हम तो आपको बता दिया कि आपके राज में तो हमारे मन की यह दशा है और आपके बाप के राज के माँ वो दशा थी और आपके बापे के राज के माँ वो दशा, अब किसका राज बढ़िया और किसका राज घटिया इसका अंदाजा तो आप ही लगाओ। तो कहने का मेरा अभिप्राय यह है कि जैसा करे संग और तैसा चढ़े रंग, कोयला की दराली में कड़ा हाथ होता है, हम कोयला ही दिखा दोगे तो हमारा कपड़ा भी थोड़ा काला हो गया। तो आप इस बात को एक ध्यान देकर के देखिए, ये बात हमने बहुत जगह अक्सर से देखी है, इसको इजमास करके देखिए कि जैसा संग किया गया है उसका असर जरूर होगा। तो एक प्रकार से थी अपने ऊपर असर हुए उससे थी अपने को आपने उसका अंदाजा लगाना चाहिए, ये असली परीक्षा है और हमारी बतलाई हुई जो परीक्षा है वो तो गलत है। उसी के विश्वास पर नहीं रहना चाहिए। और ये हमने युक्ति जो बतलाई है, ये युक्ति ऐसी बलवान है कि इसके लिए किसी को पूछने की आवश्यकता नहीं। नारायण 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 शिव नारायण 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 शिव नारायण नारायण शिव नारायण नारायण शिव नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण श्यावर रामचंद्र की जय, मोर मुकुट बंसी वाले की जय।